एक छोटा चमकीला लॉन ढलान बनता हुआ बड़े चमकीले समुद्र तक उतरता था। घास के किनारे सुर्ख जिरेनियम और रंगीन पत्तियां लगी थी। चॉकलेटी रंग से पुते लोहे के गमले समुद्र तक जाती बल खाती राह पर बराबर दूरी पर खड़े थे और सवारी हुई बजरी के ऊपर पेटूनिया की मालाएं झूलती थीं। चट्टान के किनारे और चौकोर लकड़ी के मकान के बीच मकान भी चॉकलेटी था, बस बरामदे की टीन की छत पर शामियाने जैसी पीली भूरी धारियां थीं। झाड़ियों की ओट में दो बड़े निशाने गड़े थे। लॉन के दूसरी ओर सचमुच का एक तंबू तना था, जिसके चारों ओर बेंचे और बाग की कुर्सियां थीं। गर्मियों की पोशाकों में महिलाएं और स्लेटी कोट व ऊंचे हैट वाले पुरुष घास पर खड़े या बेंचों पर बैठे थे। बीच बीच में कल्फ लगी मलमल पहने कोई छरहरी लड़की धनुष लिए तंबू से निकलती, निशाने पर तीर छोड़ती और दर्शक बातचीत रोक कर नतीजा देखते। न्यूलैंड आर्चर मकान के बरामदे में खड़ा ये दृश्य कौतूहल से देख रहा था। चमकती सीढ़ियों के दोनों ओर पीले चीनी मिट्टी के पायों पर नीले चीनी मिट्टी के बड़े गमले रखे थे, जिनमें नुकीले हरे पौधे उगे थे। बरामदे के नीचे लाल जेरेनियम से घिरी नीली हाइड्रेंजिया की कतार थी। उसके पीछे बैठक के कांच द्वारों से लहराते लेस के पर्दों के बीच चमकते फर्श, फूलदार कपड़े से मढ़ी कुर्सियां और चांदी से लदी मखमली मेजें झलक रही थीं। न्यूपोर्ट का तीरंदाजी क्लब अगस्त की अपनी सभा हर साल ब्यूफर्ट के घर करता था। इस खेल का अब तक क्रोके के सिवा कोई प्रतिद्वंद्वी न था। अब लॉन टेनिस उसे पछाड़ रहा था, पर टेनिस अभी भी सामाजिक जमावड़ों के लिए फुहड़ माना जाता था। सो सुंदर पोशाकें और सुघड़ मुद्राएं दिखाने के अवसर के रूप में धनुष बाण की अपनी कीमत बनी हुई थी। आर्चर इस जाने पहचाने दृश्य को अचरज से देख रहा था। हैरानी थी कि उसकी हर भावना बदल चुकी थी, फिर भी जिंदगी पुराने ढर्रे पर बही जा रही थी और ये बदलाव न्यूपोर्ट में ही सबसे साफ महसूस होता था। पिछली सर्दियों में न्यूयॉर्क में वो मे के साथ हरियाई पीली दीवारों और पोम्पेई शैली के द्वार वाले नए घर में बस गया था। दफ्तर की दिनचर्या में लौटकर उसने अपने पुराने स्वर से जुड़ा धागा थामा था। मे की बग्घी के लिए शानदार भूरा घोड़ा चुनने का आनंद भी था। गाड़ी वेलेंट परिवार ने भेंट की थी और परिवार की शंकाओं के बावजूद अपने सपने के मुताबिक नया पुस्तकालय सजाने का सुख भी। गहरे उभरे वॉलपेपर, ईस्ट लेक अलमारियां, खरी कुर्सियां और मेजें। सेंचुरी क्लब में विंसेंट से फिर भेंट हुई। निकरबॉकर में अपने दायरे के बांके नौजवानों से कानून के काम, घर या बाहर के भोज और ओपेरा की शामों के बीच बहती जिंदगी उसे अब भी असली और अनिवार्य लगती थी। पर न्यूपोर्ट हर कर्तव्य से भागकर केवल आराम और मौज की आबोहवा में जा बसना था। आर्चर ने मे को मेन के तट से दूर एक निर्जन टापू, जिसका नाम ही ठीक ठीक माउंट डेजर्ट था, पर गर्मियां बिताने का सुझाव दिया था। वहां बोस्टन और फिलाडेल्फिया के कुछ साहसी लोग देसी झोपड़ियों में डेरा डाले थे और वहां के जादुई नजारों तथा जंगलों नदियों के बीच शिकारियों सी जंगली जिंदगी की खबरें आती थीं। पर वेलैंड परिवार गर्मियां हमेशा न्यूपोर्ट में बिताता था। चट्टान पर बने चौकोर मकानों में से एक उनका था और दामाद को कोई बहाना न सूझा कि वो और मे उनके साथ क्यों न रहें। श्रीमती वेलैंड ने चुभते स्वर में कहा भी कि मे पेरिस में गर्मियों की पोशाकें आजमाते आजमाते थक गई, अगर वो उन्हें पहन ही न सके तो क्या फायदा। ऐसे तर्कों का जवाब आर्चर को अब तक नहीं मिला था। खुद मे भी नहीं समझ पाती थी कि गर्मियां इतने समझदार और सुखद ढंग से बिताने में पति को क्या अड़चन है। उसने याद दिलाया कि कुवारेपन में उसे न्यूपोर्ट पसंद था, ये अकाट्य सच था। सो वो बस इतना कह सका कि अब तो हम साथ होंगे और भी अच्छा लगेगा। पर ब्यूफर्ड के बरामदे से जगमगाते लॉन को देखते हुए उसे सिहरन के साथ बोध हुआ कि ये जगह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मे का दोष ना था, यात्रा में कभी कभी दोनों की लय जरा बिगड़ जाती थी, पर जानी पहचानी परिस्थितियों में लौटते ही सब फिर सद गया। आर्चर हमेशा से जानता था कि मे उसे निराश नहीं करेगी और अनुमान सही निकला। उसने विवाह किया था अधिकांश पुरुषों की तरह, क्योंकि जब लक्ष्य ही न, इश्कबाजियों का सिलसिला असमय ऊप पर खत्म हो रहा था, तभी उसे एक मोहक लड़की मिली। शांति, स्थिरता, साथ और अटल कर्तव्य भावना की प्रतिमूर्ति। वो नहीं कह सकता था कि चुनाव गलत था, क्योंकि मे उसकी हर अपेक्षा पूरी करती थी। न्यूयॉर्क की सबसे सुंदर, सबसे चहेती स्त्री का पति होना बड़ा संतोष था। ऊपर से वो सबसे मीठे समझदार स्वभाव की पत्नी थी। इन खूबियों से आर्चर कभी उदासीन न रहा। रही ब्याह की पूर्व संध्या की वो क्षणिक हलचल, अब वो उसे अपने छोड़े हुए प्रयोगों में आखिरी मानता था। ये ख्याल कि उसने कभी होश हवास में काउंटेस ओलेंस्का से विवाह का सपना देखा होगा लगभग असंभव लगने लगा था। वो स्मृति में बस प्रेतों की कतार की सबसे करुण सबसे मार्मिक छाया रह गई थी। पर इन सब बौद्धिक कवायदों और अतीत मिटाने की कोशिशों से मन सूना और गूंजता रह गया था और उसे लगा कि ब्यूफर्ट के लॉन पर चहकते लोग ऐसे हैं जैसे कब्रिस्तान में खेलते बच्चे। तभी बगल में स्कर्ट की सरसराहट हुई और मार्कीज़ा मैनसन बैठक की खिड़की से लचकती हुई प्रकट हुई। हमेशा की तरह वो निराले ठाट से सजी थी। ढीले लेगहॉर्न हैट पर मुरझाई जाली के कई फेरे और नक्काशीदार हाथी दांत की मूठ वाली छोटी काली मखमली छतरी जो हैट के कहीं बड़े किनारे पर हास्यास्पद ढंग से टिकी थी। अरे न्यूलैंड, पता ही नहीं चला कि तुम और मैं आ गए। कल ही आए? हाँ, दफ्तर का काम। समझती हूँ, जानती हूँ, कई पति सप्ताहांत के सिवा यहाँ पत्नियों से नहीं मिल पाते। उसने सिर टेढ़ा किया और अधमुदी आंखों से उसे अलसाई नजर से देखा। मैं एलन से अक्सर कहती हूँ, विवाह एक लंबा बलिदान है। आर्चर का दिल उसी अजीब झटके से रुक सा गया जो वो पहले एक बार झेल चुका था। मानो उसके और बाहरी दुनिया के बीच कोई दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया हो। पर ये टूटन लंबी न रही। जल्द ही उसने सुना कि किसी सवाल के जवाब में, जो शायद वो पूछ बैठा था, मार्कीज़ा कह रही थी, नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहरी। पोर्टस्मथ में ब्लेंकर परिवार के पास हूँ। आज ब्यूफर्ट ने कृपा कर अपने मशहूर घोड़े भेज दिए ताकि रेजीना की बाग पार्टी की एक झलक तो देख सकूं। पर आज शाम मैं देहाती जीवन में लौट जाऊंगी। ब्लेंकर लोग सचमुच निराले जीव हैं। उन्होंने पोर्टस्मथ में एक पुराना आदिम फार्म हाउस किराए पर लिया है और वहां चुनिंदा लोगों को बुलाते रहते हैं। वो हैट के किनारे तले जीरा झुकी और हल्की लाली के साथ बोली, इस हफ्ते डॉक्टर अगाथन कार्वर वहां आंतरिक विचार की बैठकों की श्रृंखला चला रहे हैं। इन सांसारिक रंगरलियों की पार्टी से कैसा विरोधाभास। पर मैं तो सदा विरोधाभासों में ही जी हूं। मेरे लिए एकमात्र मृत्यु है एक रास्ता। मैं एलन से हमेशा कहती हूं, एक रास्ता से बचना, वही सब घातक पापों की जननी है। पर मेरी बेचारी बच्ची इन दिनों उन्माद के संसार से विरक्ति के दौर से गुजर रही है। जानते हो, उसने न्यूपोर्ट के सारे न्योते ठुकरा दिए, नानी मिंगट के पास ठहरने का न्योता भी। यकीन करोगे, मैं बड़ी मुश्किल से उसे ब्लिंकर के घर तक ला पाई। जो जिंदगी वो जी रही है वो रुग्ण है, अप्राकृतिक है। आह, काश उसने मेरी बात तब मानी होती जब अवसर था, जब दरवाजा अभी खुला था। फिर एकाएक बात का रुख बदल कर वो चहकी, अब चले वो रोमांचक मुकाबला देखे। सुना है मैं भी उतरी है। ब्यूफर्ट तंबू से निकला और टहलता सा लॉन पार कर उनकी ओर आया। लंबा भारी भरकम जरूरत से ज्यादा कसे लंदनी कोट में, कोट पर अपने ही ग्रीन हाउस का एक आर्किड। 2-3 महीने बाद उसे देखकर आर्चर उसकी सूरत के बदलाव पर चौंका। भरी गर्मी की चौंधियाती धूप में उसका लाल चेहरा और भी भारी फूला फूला लगता था। अगर वो ताने हुए कंधों से सीधा न चलता तो ठूस ठूस कर खिलाया, जरूरत से ज्यादा सजाया कोई बूढ़ा ही लगता। ब्यूफर्ट के बारे में हजार अफवाहें उड़ रही थीं। वसंत में वो अपनी नई भाप नौका लेकर वेस्ट इंडीज की लंबी सैर पर गया। कहते थे कई ठिकानों पर उसके साथ मिस फैनी रिंग जैसी दिखने वाली एक स्त्री देखी गई। क्लाइड में बनी उस नौका में टाइलों वाले स्नान घर और अनसुने ऐशो आराम थे। कहा जाता था कि उस पर $5,00,000 लगे। लौट कर उसने पत्नी को मोतियों का हार दिया, प्रायश्चित की भेंटों जैसा ही शानदार। उसकी दौलत ये खर्च झेल सकती थी, फिर भी बेचैन करने वाली अफवाहें 5वें एवेन्यू से वॉल स्ट्रीट तक फैलती रहीं। कोई कहता उसने रेलवे में गलत सट्टा खेला, कोई फुसफुसाता कि शहर की सबसे लालची तवायफों में से एक उसे निचोड़ रही है। दिवालियेपन की हर अफवाह का जवाब ब्यूफर्ट किसी नई फिजूल खर्ची से देता। आर्किड का नया ग्रीन हाउस, दौड़ के नए घोड़े या संग्रह में कोई नया मेसोनिये या कैबनेल। वो अपनी चिर परिचित उपहास भरी मुस्कान लिए मेडोरा और न्यूलैंड की ओर बढ़ा। क्यों मेडोरा, घोड़ों ने अपना काम किया? 40 मिनट, खैर, आपकी नसों का ख्याल रखना था, उस लिहाज से बुरा नहीं। उसने आर्चर से हाथ मिलाया, फिर घूमकर मेडोरा की दूसरी ओर जा खड़ा हुआ और धीमे स्वर में कुछ कहा जो साथियों को सुनाई न दिया। मार्कीजा ने अपने विदेशी अंदाज में हाथ नचाकर कवुलेवू क्या किया जाए कहा, जिससे ब्यूफर्ट के माथे की सिलवट और गहरी हो गई, पर उसने आर्चर की ओर देखकर बधाई की काफी विश्वसनीय मुस्कान ओढ़ी। जानते हो, पहला इनाम मैं ही ले जाएगी, तो इनाम घर में ही रहेगा, मेडोरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। तभी वे तंबू तक पहुंचे और हल्के बैंगनी मलमल और लहराते आवरणों में लिपटी श्रीमती ब्यूफर्ट ने किशोरी से भाव के साथ उनका स्वागत किया। मैं वेलैंड उसी क्षण तंबू से निकल रही थी। सफेद पोशाक, कमर पर हल्का हरा फीता, हेड पर बेल की पत्तियों का हार, उसमें वही डायना देवी सा गर्व था जो सगाई के दिन ब्यूफर्ट के नृत्य कक्ष में प्रवेश करते समय था। लगता था बीच के समय में उसकी आंखों के पीछे से एक भी विचार, हृदय से एक भी भाव नहीं गुजरा, और पति जानता था कि दोनों उसमें हैं। फिर भी दंग रह गया कि अनुभव उस पर कोई निशान छोड़े बिना कैसे फिसल जाता है। धनुष बाण थामे वो घास पर खिंची चाक की रेखा पर खड़ी हुई, धनुष कंधे तक उठाया और निशाना साधा। मुद्रा में ऐसी शास्त्रीय गरिमा थी कि जमावड़े में प्रशंसा की सरसराहट दौड़ गई और आर्चर ने स्वामित्व की वो गर्म उमंग महसूस की जो उसे अक्सर क्षणिक संतोषों से छलती थी। उसकी प्रतिद्वंद्वी रेजी शिवर्स की पत्नी मेरी बहने और थोरली डैगोनेट व मिंगट घरानों की कई गुलाबी चेहरों वाली युवतियां पीछे बेचैन झुंड में खड़ी थी। अंक पट पर झुके भूरे और सुनहरे सिर, हल्की मलमले और फूलों वाले हैट मिलकर एक कोमल इंद्रधनुष बन गए थे। सब जवान थी, सुंदर थी, गर्मियों के फूलों सी खिली हुई, पर किसी में भी उसकी पत्नी जैसी अप्सरा सी सहजता न थी। जब वो मांसपेशिया कसे प्रसन्न तनी भोहों के साथ पूरा मन लगाकर निशाना साध रही थी, कसम से आर्चर ने लॉरेंस लेफरट्स को बुदबुदाते सुना, धनुष ऐसा कोई नहीं थामता। और ब्यूफर्ट ने ताना मारा, हाँ, पर यही एक किस्म का निशाना है जो वो कभी भेद पाएगी। आर्चर के भीतर बेतुका क्रोध भड़क उठा। मेजबान का मे की शालीनता का ये हिकारत भरा बखान वही तो था जो पति को सुनकर खुश होना चाहिए। कोई फुहड़ आदमी उसे आकर्षक न पाए, ये तो उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण था। फिर भी उन शब्दों से उसके सीने में हल्की ठंडी कंपकंपी रह गई। और अगर शालीनता अपनी पराकाष्ठा पर केवल एक नकार हो, शून्य के आगे तना पर्दा। आखिरी तीर ठीक बीच में उतार कर गुलाबी चेहरे से शांत लौटती मे को देखते हुए उसने सोचा कि उसने वो पर्दा आज तक एक बार भी नहीं उठाया। मे ने प्रतिद्वंद्वियों और बाकी सब की बधाइयां उसी सरल स्थिर मुस्कान से स्वीकारी जो उसका मुकुट थी। कोई उसकी जीत से जल न सकता था, क्योंकि वो ऐसा भाव देती थी कि हार में भी वो ऐसी ही शांत रहती। पर जैसे ही उसकी आंखें पति से मिली, उसका चेहरा उस खुशी से खिल उठा जो उसने पति के चेहरे पर देखी। श्रीमती वेलैंड की टोकरी नुमा टट्टू गाड़ी उनकी राह देख रही थी। वे बिखरती गाड़ियों के बीच से निकल पड़े, रास मे के हाथ में, आर्चर उसके पास। दोपहर बाद की धूप अब भी लॉन और झाड़ियों पर ठहरी थी। बेलव्यू एवेन्यू पर विक्टोरिया, डॉग कार्ट, लैंडो और विज आवी आ जा रहे थे। सजे धजे लोग पार्टी से लौटते या ओशन ड्राइव की सैर से घर जाते। नानी के यहाँ चले, मैं ने अचानक कहा, मैं खुद उन्हें बताना चाहती हूँ कि इनाम जीत लिया। रात के खाने में अभी बहुत वक्त है। आर्चर मान गया और मैं ने टट्टुओं को नैरागेंसेट एवेन्यू की ओर मोड़ा, स्प्रिंग स्ट्रीट पार की और पथरीले उजाड़ की ओर बढ़ चली। वो इलाका फैशन से कोसों दूर था, पर परिपाटियों को ठेंगा दिखाने वाली और पैसे में किफायती कैथरीन महान ने जवानी में वहीं खाड़ी के सामने की सस्ती जमीन पर कई छतों और आड़े शहतीरों वाला सजावटी ढंग का बंगला बनवाया था। बौने बलूतों के बीच उसके बरामदे टापुओं से जड़े पानी पर खुलते थे। बल खाती राह जिरे नियम के ढूंढों के बीच से ऊपर चढ़ती थी, जिनमें लोहे के हिरन और नीले कांच के गोले चमकते थे, और धारीदार छत तले पॉलिश किए अखरोटी दरवाजे तक जाती थी। भीतर काले पीले सितारों वाले फर्श का तंग गलियारा चार छोटे चौकोर कमरों में खुलता था, जिनकी छतों पर किसी इतालवी चित्रकार ने ओलंपस के सारे देवता उकेर दिए थे। देह के बोझ ने जब श्रीमती मिंगट को घर में बांध दिया तो इनमें से एक कमरा शयन कक्ष बन गया। बगल के कमरे में वो दिन बिताती थी, खुले दरवाजे और खिड़की के बीच बड़ी आराम कुर्सी पर विराजमान, हाथ के ताड़ पंखे को अनवरत झलती हुई। उसका विराट वक्ष पंखे को शरीर से इतनी दूर रखता कि हवा बस कुर्सी की बाहों पर पड़े झालरों को हिला पाती। आर्चर के ब्याह को जल्दी कराने में हाथ बटाने के बाद से बूढ़ी कैथरीन उस पर वो गर्म जोशी लुटाती थी जो उपकार करने वाले के मन में उपकृत के लिए उपज आती है। उसे पक्का यकीन था कि इस जल्दबाजी की वजह बेकाबू इश्क था और आवेग की प्रशंसक होने के नाते बशर्ते उसमें पैसा न उड़े वो हर भेंट पर उसे साजिशी आंख मारती और ढके छिपे इशारे करती जिन्हें सौभाग्य से मैं ताड़ नहीं पाती थी। प्रतियोगिता के बाद मैं के सीने पर टंका हीरो जड़ा तीर उसने बड़े गौर से जांचा, बोली कि उसके जमाने में नक्काशीदार ब्रोच ही बहुत होता, पर ये मानना पड़ेगा कि ब्यूफर्ट काम बड़े पैमाने पर करता है।
यह तो लगभग विरासत है बच्ची, बुढ़िया खिलखिलाई। अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम कर देना। उसने मैं की गोरी बांह चिकोटी और मैं का चेहरा लाल हो उठा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो लाल पड़ गई? क्या इरादा सिर्फ बेटे जनने का है? और जब मैं माथे तक तमतमा गई तो कैथरीन ठहाका मारकर बोली, अच्छा ये भी नहीं कहने का। हे राम, जब मेरे बच्चे गिड़गिड़ाते हैं कि छत के इन देवताओं को मिटवा दो तो मैं यही कहती हूँ, शुक्र है अब भी एक जन बचा है जिसे किसी बात से झेप नहीं आती। आर्चर ठठाकर हंसा और मैं भी आंखों तक लाल होकर हंस पड़ी। चलो अब पार्टी का पूरा हाल सुनाओ, क्योंकि उस बुद्धू मेडोरा से तो ढंग की बात कभी नहीं मिलेगी, नानी ने आगे कहा। मैं चौंकी, मेडोरा बुआ, वे पोर्ट्समथ नहीं लौट गईं? कैथरीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ पर पहले यहाँ रुक कर एलन को लेती जाएगी। अरे तुम्हें पता नहीं कि एलन आज का दिन मेरे साथ बिता रही है? सारी गर्मियां न आने की उसकी ये जिद निरा पागलपन है, पर जवानों से बहस करना मैंने 50 साल पहले छोड़ दिया। वो बरामदे से परे लॉन झांकने को झुकी और तीखी आवाज में पुकारा, एलन एलन। कोई उत्तर नहीं। खींच कर श्रीमती मिंगट ने चमकते फर्श पर छड़ी ठोकी। पुकार सुनकर चटक पगड़ी बांधे एक अश्वेत नौकरानी आई और बताया कि उसने मिस एलन को समुद्र तट की पगडंडी से नीचे जाते देखा है। तब श्रीमती मिंगट आर्चर से बोली, अच्छे नाती की तरह जाकर उसे ले आओ, तब तक ये सुंदरी मुझे पार्टी का हाल सुनाएगी।
आर्चर सपने में चलता सा उठा। आखिरी मुलाकात के बाद के 1.5 साल में उसने एलन ओलेंस्का का नाम बार बार सुना था, उसके जीवन की मुख्य घटनाएं तक जानता था। जानता था कि पिछली गर्मियां उसने न्यूपोर्ट में खूब मेल जोल के साथ बिताई और पतझड़ में ब्यूफर्ट की बड़ी मशक्कत से ढूंढी बेजोड़ कोठी अचानक किराए पर उठाकर वॉशिंगटन जा बसी। सर्दियों में सुना गया, जैसा वॉशिंगटन की हर सुंदरी के बारे में कहा जाता है, कि वो उस चमकदार कूटनीतिक समाज में दमक रही है जो सरकार की सामाजिक कमियां पूरी करता माना जाता है। आर्चर ने ये सब बातें उसकी सूरत, बातचीत, विचारों और मित्रताओं के परस्पर विरोधी किस्से उसी विरक्ति से सुनी थी जैसे किसी चिर दिवंगत की चर्चा हो। एलन उसकी चेतना में अब सजीव उपस्थिति न थी, पर तीरंदाजी के मैदान में जब मेडोरा ने उसका नाम लिया, एलन ओलेंस्का फिर जीती जागती होकर उसके मन में उतर आई। मार्कीजा के भोंडे उच्चारण ने आग की रोशनी वाले छोटे बैठक खाने और सोनी गली में गूंजते बग्घी के पहियों की तस्वीर जगा दी। उसे अपनी पढ़ी एक कहानी याद आई, टस्कनी के किसान बच्चे राह किनारे की गुफा में पुआल का गट्ठर जलाकर कब्र से अंधेरे में सोए पुराने चित्र उजागर करते हैं।
घर के टीले से समुद्र तट को उतरती राह पानी के किनारे बनी सैरगाह से जा मिलती थी जिस पर रोते विलो लगे थे। पत्तों के पर्दों के बीच से आर्चर को लाइम रॉक की झिलमिल दिखी, सफेद मीनार और वो छोटा घर जहां वीर प्रकाश स्तंभ रक्षिका आइडा लुइस अपने आदरणीय अंतिम दिन बिता रही थी, उसके परे गोट द्वीप की समतल जमीन और सरकारी इमारतों की बदसूरत चिमनियां थी। खाड़ी सुनहरी आभा में उत्तर की ओर बौने बलूतों वाले प्रूडेंस द्वीप तक फैली थी और कोनानिकट का किनारा शाम की धुंध में धुंधला रहा था। सैरगाह के छोर पर लकड़ी की छोटी जेटी पानी में उतरती थी जिसके सिरे पर पगोड़ा जैसा मंडप बना था। मंडप में तट की ओर पीठ किए एक स्त्री जंगले से टिकी खड़ी थी। आर्चर नींद से जागे आदमी की तरह ठिठक गया। अतीत का दृश्य सपना था, असलियत वो थी जो टीले के घर में उसकी बाट जोह रही थी। द्वार के सामने अंडाकार घेरे में घूमती श्रीमती वेलैंड की टट्टू गाड़ी, ओलंपस के रुष्ट देवताओं तले बैठी गुप्त आशाओं से दमकती में बेलव्यू एवेन्यू के छोर पर वेलैंड कोठी और हाथ में घड़ी थामे बदहजमी के मारे सा अधीर होकर बैठक में टहलते श्री वेलैंड। उस घर में हर घड़ी सबको पता रहता था कि क्या हो रहा है। मैं हूं ही क्या, बस एक दामाद, आर्चर ने सोचा। जेटी के सिरे की आकृति हिली नहीं। नौजवान देर तक ढलान के बीच खड़ा खाड़ी में आते जाते बजरों, पालदार नौकाओं और कोयले के बजरे खींचते शोर मचाते टग बोटों को देखता रहा। मंडप की स्त्री भी उसी दृश्य में खोई लगती थी। फोर्ट एडम्स की धूसर बुर्जियों के पार लंबा सूर्यास्त हजार लपटों में बिखर रहा था और उस आभा ने लाइम रॉक और तट के बीच के जलमार्ग से निकलती एक छोटी पाल नौका के पाल को जगमगा दिया। देखते देखते आर्चर को शॉग्रॉन नाटक का वो दृश्य याद आया। मॉन्टेग्यू एडा डायस का फीता होंठों से लगाता है और उसे पता तक नहीं कि वो कमरे में है। वो नहीं जानती, उसे गुमान तक नहीं, और अगर वो मेरे पीछे आ खड़ी हो तो क्या मैं जान जाऊंगा। वो बुदबुदाया, फिर सहसा, अगर उस पाल के लाइम रॉक की बत्ती पार करने से पहले वो नहीं मुड़ी तो मैं लौट जाऊंगा। नाव भाटे के साथ सरकती गई। वो लाइम रॉक के आगे से गुजरी, आइडा लुइस का घर ढापा, प्रकाश स्तंभ की मीनार लौंग दई। आर्चर तब तक रुका रहा जब तक द्वीप की आखिरी चट्टान और नाव की दुम के बीच झिलमिल पानी की चौड़ी पट्टी न खुल गई। मंडप की आकृति फिर भी निश्चल थी। नौजवान मुड़ा और टीला चढ़ गया। धुंधलके में घर लौटते हुए मैं बोली, अफसोस एलन नहीं मिली, मैं उससे फिर मिलना चाहती थी, पर शायद उसे परवाह भी न होती, वो इतनी बदल गई है। बदल गई, पति ने बेरंग आवाज में दोहराया। निगाहें टट्टुओं के फड़कते कानों पर टिकी रहीं। मतलब दोस्तों से उदासीन हो गई है, न्यूयॉर्क और अपना घर छोड़कर अजीब लोगों में वक्त बिताती है। सोचो ब्लिंकर के घर उसे कैसा अखरता होगा। कहती है मेडोरा बुआ को एक और बेतुकी शादी से रोकने के लिए है, पर कभी कभी लगता है हम लोग शायद उसे हमेशा उबाऊ ही लगे। आर्चर चुप रहा। मैंने जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अपनी साफ आवाज में पहले कभी न सुनी दृढ़ता के साथ कहा, आखिर मुझे लगता है कहीं वो अपने पति के साथ ज्यादा सुखी न होती। आर्चर ठहाका मार उठा, कैसी पावन सादगी, वो बोला और मैं की चकित निगाह पर जोड़ा, लगता है तुम्हारे मुंह से इतनी निर्दय बात मैंने कभी नहीं सुनी। निर्दय? कहते हैं नरक में तड़पते पापियों का तमाशा देखना फरिश्तों का शौक है, पर वे भी ये तो नहीं मानते कि लोग नरक में ज्यादा सुखी हैं। तब तो अफसोस की बात है कि उसने विदेश में शादी की, मैं ने उसी कोमल स्थिरता से कहा जिससे उसकी माँ श्री वेलेंट की सनकें झेलती थी, और आर्चर ने महसूस किया कि उसे चुपचाप बेतुके पतियों के खाने में सरका दिया गया है। वे बेलव्यू एवेन्यू से नीचे उतरे और लोहे के लैंप उठाए तराशे लकड़ी के खंभों के बीच से भीतर मुड़े। यही वेलेंट को ठीका प्रवेश था। खिड़कियों में बत्तियां जगमगा रही थीं और गाड़ी रुकते ही आर्चर को ठीक वैसा ही ससुर दिख गया जैसा उसने सोचा था। हाथ में घड़ी, बैठक में चहलकदमी करते, चेहरे पर वो पीड़ित भाव जिसे वे बरसों पहले क्रोध से कहीं ज्यादा कारगर पा चुके थे। पत्नी के पीछे पीछे ड्यूढ़ी में आते हुए नौजवान ने भावनाओं की अजीब पलटी महसूस की। वेलेंट घराने की विलासिता और छोटी छोटी मांगों से गाढ़ा वहां का माहौल उसे हमेशा मीठी दवा सा शांत करता था। भारी कालीन, चौकस नौकर, घड़ियों की अनुशासित टिक टिक, ड्योरी की मेज पर बराबर जमा होते कार्ड और निमंत्रण, तानाशाह छोटी छोटी बातों की वो जंजीर जो एक घंटे को अगले से और घर के हर सदस्य को बाकी सबसे बांधे रखती थी। ऐसे सुव्यवस्थित समृद्ध जीवन के आगे हर दूसरा जीवन अवास्तविक और डावाडोल लगता था, पर अब अवास्तविक और निरर्थक वेलेंट कोठी और वहां उसकी प्रतीक्षा करता जीवन हो गया था, और समुद्र तट की ढलान पर ठिठक कर दुविधा में बीता वो छोटा सा क्षण उसकी रगों में बहते लहू जितना पास आ गया था। रात भर वो फूलदार शयन कक्ष में मे के पास जागा रहा, कालीन पर उतरती चांदनी देखता, एलन ओलेंस्का को सोचता जो ब्यूरफट के घोड़ों के पीछे झिलमिलाते तट से घर लौट रही थी।